ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम मन्मनाभावमद्भक्तो मद्याजीनां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि प्रति मामे वैश्यसि प्रत्यं ते प्रतिजाने ही प्रियोसि मे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कामैस्तैतैरृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार सब भगवान का नाम ऐसे ले लो कि ये आपका जीवन का भगवान के नाम लेने का आखिरी मौका है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ईश्वर परम कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम् सर्वकारण कारणम् हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज 28 दिसंबर के इस दिन पर आप सबका कोणार्क में सूर्य मंदिर में स्वागत है। भगवान को प्राप्त करने के कई मार्ग हैं, उसमें से एक मार्ग है कर्मकांड। बहुत लंबा चक्र है वो, कर्म करते 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 धीरे 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 कर्मों के फल की इच्छा धीरे 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 कई जन्म के बाद थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। कर्म फल से व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान गीता में बताते हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो उनके लिए कर्म करना चाहिए। और कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। एक कर्म वो है जो हमारा कर्तव्य होता है, जो हमें करना चाहिए। दूसरा कर्म होता है वो नहीं करना चाहिए, जो पाप कर्म होता है, वी कर्म कहते हैं उसको। जैसे मांसाहार, नशा, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को जख्मी करना, मन से तन से भावना से दुख देना, किसी का खून कर देना, गर्भपात करना, बलात्कार करना, डाका डालना, आग लगाना किसी के घर पे, ये जघन्य पाप बताए गए हैं। हाँ, 7 प्रकार के जघन्य पाप शास्त्र ने वर्णन दिया है, उसको बहुत भयंकर शिक्षा दंड होता है। और तीसरा कर्म होता है अकर्म। अकर्म यानी जो हम केवल भगवान के लिए करते हैं। जैसे भगवान आरती कर रहे हैं तो आरती में तो तनख्वाह मिल सकती है आपको नौकरी के रूप में, लेकिन आरती हम भगवान के लिए कर रहे हैं, या भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं उनको भोग लगाने के लिए, या और गुरु जी की दी गई सेवा कर रहे हैं, उसमें भी हम फल की अपेक्षा करते हैं। क्योंकि गुरु जी की इतना सेवा किया, प्रमोशन नहीं हुआ नौकरी में, ब्रह्मचारी था, अच्छी बीवी नहीं मिली। तो निरपेक्ष भावना से भगवान की सेवा करना, इसको अकर्म कहते हैं। और बीच में आता है ज्ञान योग, कर्म योग के बाद में ज्ञान योग। बहुत समय तक कर्म करने के बाद में बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, माम क्या, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इसको बहुत जन्म लगता है, देखो पहले लिखा है बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्म होने के अंत में उस ज्ञानी व्यक्ति को उसको ज्ञानवान कहते हैं, जिसको पता चलता है कि ये सब कर्म वर्म में कुछ मतलब नहीं है, ये विरक्ति में भी कुछ मतलब नहीं है, ये सबका सार वासुदेव है। सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे अनुभूति जिसको होती है कि ये सब कर्म ज्ञान जो सब कुछ है, विरक्ति वगैरह सब कुछ अपनी जगह पर है, झूठ है सब, अंतिमता वासुदेव को ही शरण जाना है। वासुदेवम सर्वमिति, ये सबका सार वासुदेव है, कृष्ण है। और ऐसा महात्मा स्वयं कृष्ण बोलते हैं, बहुत सुदुर्लभ, केवल दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, अति दुर्लभ। ऐसी अनुभूति होने के बाद में, बहुत जन्मों के बाद में वो व्यक्ति भक्त बनता है, जानता है कि अभी कर्म ज्ञान में कोई अर्थ नहीं है, अभी भगवान को शरण जाना चाहिए। और भगवान भी कई प्रकार के योग का गीता में वर्णन करते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, संन्यास योग, राजयोग, ध्यान योग, बहुत प्रकार के। पता थे अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि भाई कई मार्ग है मेरे पास आने के लिए, इन ये सब बताने के बाद बोलते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मनः, ये सारे योगी जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं, मुझे हासिल करना चाहते हैं, वो सभी को योगी कहते हैं। योगी यानी जो व्यक्ति भगवान से जुड़ना चाहता है किसी मार्ग से, चाहे अष्टांग योग क्यों ना हो, सिद्ध योग क्यों ना हो, वो भगवान से कहीं ना कहीं संपर्क करना चाहता है। लेकिन योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मनः, ये सारे योगियों में जो मेरे ही स्मरण में, मेरे ही ध्यान में, मेरी सेवा में मग्न है, मद्गते अंतरात्मनः, उसकी गति मुझ में है, उसकी मति मुझ में व्यस्त है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ योगी है, ऐसे भगवान स्वयं बता रहे हैं। जिनको प्राप्त करना है वही बता रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका क्या है, मेरे घर में कैसे आना है, ये सबसे बेस्ट मैं ही आपको बता सकता हूँ, दूसरा नहीं बता सकता है। जिस घर में मैं रहता हूँ वो उस घर में कैसे पहुँचना है, ये सबसे बेस्ट मैं ही आपको बता सकता हूँ। उस तरह से जिस व्यक्ति को आपको प्राप्त करना है वही स्वयं बता रहे हैं हाउ टू रीच हिम। तो इसमें जीव हमारा जो है, हमारा जो जीवन है, बहुत धक्के खाकर अनेक रास्तों में चलता है, थोड़ा ये ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा वो कर रहे, कोणार्क में आ गए यहाँ शॉपिंग में क्या मिल रहा है देख लेते हैं, अरे भुवनेश्वर गए उधर क्या मिल रहा है देख लेते हैं, दादर में गए दादर में क्या दिख रहा है, अरे बीटी में गए अभी तो बहुत दिन के बाद आए बीटी में, चलो एमजी मार्केट जाके आते हैं, अरे चलो चर्चगेट में गए तो फैशन स्ट्रीट जाके आते हैं, वो देखे क्या वहाँ क्या मिल रहा है। इस तरह का जीवन हम बिताते हैं, वेर एवर वी गो क्या भोग मिलता है, क्या आनंद मिलेगा, क्या बेस्ट क्या मिलता है, यहाँ पर भोग के लिए सोचते रहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, भुक्ति यानी जो कर्म का फल चाहते हैं, भोग चाहते हैं उसका, मुक्ति यानी कि जो कर्म फल कुछ नहीं चाहते, उनको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है बस, कुछ नहीं और करना है उनको। और एक सिद्धि कामी, उनको सिद्धि चाहिए, चमत्कार, हाथ दिखाएगा तो बीमारी ठीक होना चाहिए, हवा में उड़ने की शक्ति आनी चाहिए, पानी में चलने की शक्ति आनी चाहिए, अग्नि से चलने की शक्ति आनी चाहिए, अदृश्य होने की शक्ति होनी चाहिए, आकाश में तैरने की शक्ति होनी चाहिए, ऐसे लोगों को मोह होता है। और ये सब विद्याएं हिमालय में उपलब्ध है, आप जा सकते हैं हिमालय में, बहुत लंबा कोर्स है वो। लेकिन हमारे महाराज जी जब हिमालय में रहते थे तो उन्होंने एक, जब हिमालय से नीचे आ रहे थे वो, तो उन्होंने एक योगी को देखा, जवान था वो, ज़्यादा बूढ़ा नहीं था, कई सिद्धियां प्राप्त थी उसको। तो वो नीचे आके क्या कर रहा था, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो उसने आँख पर एक कॉटन रखा था, गॉज पीस, और एक लोहे की सली जो है ना वो आँख को ऐसे लगाई थी, और एक दीवार को ऐसे लगा के रखी थी। और कुछ देर बाद जब जनता इकट्ठा हो गई तो वो चलने लगा वैसे रखे, और वैसे रखे उसने सली को, लोखंड को ऐसा गोल कर दिया उसने, समझ सकते हैं आप, आँख से कॉटन रख के लोहे की सली को दबाकर उसने गोल कर दिया। लोगों ने तालियां बजाई और उसको पैसे दिए। तो हमारे महाराज जी उसके पास गए, अरे आप इतना सारे पावरफुल काम करते हो पर ये क्यों कर रहे हो नीचे आके? वो कहते हैं विवाह करना है मुझे, इसलिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। मतलब हिमालय में गए, तपस्या किया, सिद्धि प्राप्त किया, लेकिन भोग लेने की इच्छा समाप्त नहीं हुई। और जगह हमारे गुरुदेव गए, तभी तो बालक थे, वो ढूंढ रहे थे भगवान को। तो तब गए तो एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है और उसको चरण छूने के लिए लाइन लगी है लोगों की, बहुत बड़ी लंबी दाढ़ी वाला योगी ऐसा बहुत तपस्वी दिखता है, वो बैठा है ऐसी जगह पे, लोग लाइन लगा रहे हैं उसको चरण छूने के लिए और पैसे भी डाल रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव फॉरेनर हैं तो वो भी आने लगे। तो उसने क्या किया, वो तुम आ जाओ 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 ऐसा करके उसको आगे बुलाया और अपने बाजू में बिठाया। और बाजू में बिठा कर क्या बोलते हैं उसको, ध्यान से सुनो, ये कोई पटकथा नहीं किसी पिक्चर की, ये हकीकत है जो हमारे गुरुदेव के चरित्र में उन्होंने लिखा है खुद। लोग उसके चरण छूने के लिए मतलब झुंबड़ उड़ लिए, झुंबड़ मतलब ऐसा धक्का मुक्की कर रहे हैं और ऊपर बैठे हुए हैं। और वो बुलाते हैं इस यंग बॉय को, बाजू में बिठाते हैं और बहुत देर तक वो लाइन ख़त्म ही नहीं होती है। तो कान में बोलते हैं, क्यों आए हो तुम भारत में? भगवान को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। बोलते पागल हो तुम, जाओ अपने देश में, वहीं पर सही आनंद तो वहीं पर है, हम भी वहाँ आना चाहते हैं, हमको भी आने की व्यवस्था करो। मतलब समझ रहे हो, दिखने में तो विरक्त बाबा हैं लेकिन मन में अभी भी भोग के लड्डू फूट रहे हैं। और उस यंग व्यक्ति को जो परदेश से भगवान को खोजने के लिए आया है, उसको बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सब भूल भुलैया है, सब ये पैसा कमाने का सब चक्र है हमारा, धंधा पेट पालने का धंधा है सब। तो ये सब चलता है क्योंकि जब तक हमारे मन में स्वार्थी भोग की इच्छा जब तक नष्ट नहीं होती है, तब तक भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। अल्टीमेटली घूम फिर के अगर मन में वही तमन्नाएं हैं सब, या तो भोग प्राप्त करना है कर्मों का, या तो विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त करनी है, मुक्ति भी एक इच्छा ही है हमारी, भौतिक इच्छा है वो, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस, मुझे भगवान से कुछ लेन देन नहीं, मुझे यहां से जेल से बाहर निकलना है। और सिद्धि भी वैसे ही है, वो भी खुद के लिए है, मुझे चमत्कार दिखा के आपको इंप्रेस करना है कि देखो प्रभु जी बैठे बैठे हाथ ऊपर किया तो हाथ में लाइट आया। सब लोग भाग के चमत्कार करेंगे, नारियल देंगे, केला देंगे और बोला आशीर्वाद तो महाराज। लेकिन वो सब स्वार्थ है, कुछ नहीं उसमें। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये तीनों में स्वार्थ निहित है। लेकिन आगे का भाग में क्या लिखा है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। श्री कृष्ण में जो भक्त जो होता है उसको ना भोग चाहिए, उसको ना मुक्ति चाहिए, उसको ना सिद्धि चाहिए, वो केवल अपने भगवान की शरण चाहता है, उनकी सेवा चाहता है। वो एक ही ऐसा व्यक्ति होता है भगवान का भक्त जो कोई प्रकार की इच्छा नहीं करता है, मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता है, क्योंकि भक्ति जो है मुक्ति उसके पीछे पीछे भागती है हाथ जोड़कर। ऐसे कहते हैं सिद्धि और मुक्ति ये दो देवियां भक्त के पीछे हाथ जोड़कर दौड़ती रहती है और वो उनको देखता भी नहीं मुड़के, क्योंकि उसके भक्ति के परिणाम में सिद्धि और मुक्ति ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको अलग से भक्ति मुक्ति के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसे ही वो मुड़ जाता है और उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वो दूर भागने लगते हैं। जैसे हमारी छाया होते हैं, छाया जब आप छाया को छोड़कर चल रहे हो तो छाया आपके पीछे पीछे आती है, और आप छाया को पकड़ने का प्रयास करोगे छाया दूर दूर भागती है अपनी, होता है कि नहीं ऐसे, ये सच्चाई है। तो छाया वो मुक्ति और सिद्धि की तरह है, जितना आप उसको पाने का प्रयास करोगे उतना दूर भागेंगे, जितना छोड़ के चलोगे आपके पीछे 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 आएगी छाया। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में बीच में रास्ते में बहुत सारे स्टेशन हैं, बहुत लंबी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है ये, इसमें सबसे स्लो ट्रेन कर्मकांड की है, थोड़ी सी मीडियम फास्ट ज्ञान कांड की है, और जो सिद्धि कांड की ट्रेन है वो कहीं और जाती है, इधर जाती नहीं है, उसका गंतव्य स्थान कहीं और है। लेकिन भक्ति की ट्रेन जो है वो सुपर फास्ट ट्रेन है, उसमें आप लटके भी रहोगे तभी सबसे जल्दी पहुंच जाओगे। अभी निकले ना ढाणु लोकल, वो सीधा बोरेवली से भाईंदर, भाईंदर से विरार स्ट्रेट, बीच में रुकती नहीं किधर। वैसे भक्ति का मार्ग है, उसमें भक्त अपने आप को जीरो कर देता है और भगवान को प्रधान बना देता है। जहां पर जीवन में उसके खुद जो है स्वार्थ उसके नंबर वन पे है, उसको हटाकर वो अपने आप को भगवान को वहां बिठा देता है। लेकिन बीच में एक स्थिति ऐसी होती है कि हम लोग देवताओं के पूजन में चक्र में फंस जाते हैं। क्या खराबी है उसके अंदर? क्योंकि ये सब जो देवता है वो सब भगवान के भक्त हैं, भगवान के पुत्र हैं। जैसे होता है प्रधानमंत्री और बहुत बड़ा मंत्रिमंडल होता है उनका, बहुत सारे मंत्री होते हैं, जल संपदा मंत्री, खान मंत्री, जंगल मंत्री, पानी पानी पूर्व सप्लाई करने वाला मंत्री, और कितने प्रकार के रास्ते बनाने वाला मंत्री, कामगार मंत्री, छलाने पचासों मंत्री होते हैं और एक प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री का आपका संपर्क हो गया तो हर मंत्री के पास जाके धक्के खाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये सारे अधिकार जो बाकी मंत्रियों को प्राप्त होते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार से ही प्राप्त होते हैं। जब वो प्रधानमंत्री बनता है तो अपने अधिकार में आपको जल मंत्री बनाएगा, उसको बांधकाम मंत्री बनाएगा, उसको फलाना मंत्री बनाएगा, गृह मंत्री, सुरक्षा मंत्री बनाएगा। उसके हाथ में होता है वो, उसका अधिकार वो बांट रहा है और काम करवा के ले रहा है और सब लोग उसको रिपोर्ट करते हैं। उसमें से एक मंत्री आपके घर पे आया तो आप उसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन इस ज्ञान से करते हैं कि ये सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च तो वो बैठे हैं दिल्ली में जिनकी वजह से इनको शक्ति प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से देवताओं को भगवान के द्वारा ही निर्माण किया गया है। भगवान सबसे पहले अक्षर सृष्टि का निर्माण करते हैं, फिर ब्रह्मा को निर्माण करते हैं, ब्रह्मा के द्वारा वो जो चर सृष्टि है जीव सृष्टि का निर्माण करते हैं। उसमें सबसे पहले देवताओं का जन्म होता है। ब्रह्मा जी सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, वो निर्माण के देवता हैं, वो क्रिएशन में हैं, सृजन कहते हैं उसको। उसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं को जन्म देते हैं, उनके नाभि उसमें भ्रुकुटी मध्य से इस जगह से शिव जी का जन्म होता है। रुद्र फर्स्ट रुद्र शिव जी हैं और 11 रुद्र का निर्माण होता है, लास्ट रुद्र हनुमान जी हैं। कैसे निकलते हैं? जब भी वो निर्माण करते जाते हैं तो उनके कई पर्पज उनका यह है कि निर्माण होता जाए, लेकिन नारद मुनि पहले बच्चे उनके, वो सन्यासी बन जाते हैं, सबको विरक्ति का प्रचार कर रहे हैं, भोग मत करो, भोग मत करो। फिर और 4 पुत्र होते हैं, कुमार सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, उनको भी नारद मुनि प्रचार करते हैं, वो भी सन्यासी बन जाते हैं। तो ये देखकर ब्रह्मा जी का क्रोध आता है कि मेरे निर्माण के कार्य में मेरा ही पुत्र बाधा डाल रहे हैं। तो उस क्रोध में उनके भ्रुकुटी मध्य से रुद्र फेंके जाते हैं और शिव जी का जन्म होता है, और फिर उनके द्वारा सप्तऋषि का जन्म होता है, कश्यप मुनि का जन्म होता है, प्रजापतियों का जन्म होता है, और प्रजापतियों के द्वारा सारी जो योनियां हैं कि पक्षी योनि, सर्प योनि, कीटक योनि, मनुष्य योनि, देवता योनि, राक्षस योनि, दैत्य योनि, ऐसी सारी योनियां निर्माण होती है। और उसमें जो कश्यप मुनि की पत्नी जो अदिति है, उस अदिति के गर्भ से सारे देवता लोग जन्म लेते हैं, सुर देवता लोग, सूर्य देव, चंद्रदेव, वरुण देव, इंद्रदेव, वायुदेव, समुद्रदेव, ऐसे सब देवताएं जन्म लेते हैं उनसे। और जो दीति है उसके द्वारा दैत्यों का जन्म होता है, और जो दानु है उसके द्वारा दानवों का जन्म होता है, और वो अपने अपने तरफ से चले जाते हैं, कुछ भगवान के विरोध में दाक्षस दानव और भगवान की सेवा में सुर लोग चले जाते हैं। तो सुरों को यानी भगवान के भक्तों को, देवताओं को भगवान काम बांटते हैं कि तुम प्रकाश देना, उजाला देना, तुम जल देना, तुम जल जो नीचे जमा हो गया उसकी रक्षा करना, तुम हवा देना, ऐसे बड़े बड़े जो पोर्टफोलियो है, मेन पोर्टफोलियो। उसके बाद शिव जी के द्वारा पार्वती का विवाह होता है, उनको गणेश जी का जन्म होता है, फिर बुद्धि देवता, विघ्नहर्ता, बहुत सारे बुद्धि के कार्य उनको मिलते हैं। शिव जी को भी बहुत सारे श्रृंगार के साथ में नृत्य कला और कई प्रकार के गुण उनके पास में दिए गए हैं। ब्रह्मा जी को सबसे ज़्यादा अधिकार दिया गया है, इंद्र को देवताओं का राजा बना दिया है, ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट है ये पूरा। लेकिन सब लोगों को शक्ति जो है वो परम भगवान कृष्ण से प्राप्त होती है। उन लोगों के बीच में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन हमारे बीच में है। उनको पता है कि हमारी शक्ति क्या है, हमारी शक्ति का लिमिट क्या है, और हम कहां से कहां जा रहे हैं, और हमारा भी जीवन है, हमारा भी जन्म है, हमारा भी अंत है। ब्रह्मा जी को पता है स्वयं। अगर ब्रह्मा जी को पता नहीं होता तो जब हिरण्यकश्यप ने आज तक की भयंकर तपस्या केवल हिरण्यकश्यप ने की, इतनी भयंकर तपस्या तो किसी भक्त ने भी नहीं की है। इतनी भयंकर तपस्या करने के बाद मजबूरन ब्रह्मा जी को आना पड़ा, क्योंकि आगे करेगा तो ब्रह्मा जी का ही पद ले लेगा वो तपस्या के फल के अनुसार। तो ब्रह्मा जी को ऐसा इमरजेंसी में आना पड़ा। वो बड़े प्रसन्न होकर नहीं आए, बोले क्या चाहता है तू, क्या क्यों इतना तपस्या कर रहा है, इतने आग निकल के उसके आग से इंद्रलोक भी तप रहा है और ब्रह्मलोक तक उसकी आँच पहुंच रही है, क्या तेरे मन में क्या है? तो क्या बोलते हैं वो, फर्स्ट डिमांड क्या है उसकी, किसी को पता है? यस, मुझे मृत्यु से मुक्त कर दो, अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी क्या रिप्लाई देते हैं? यस यस तथास्तु। क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी? अरे ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे खुद मरना है, जिस मृत्यु से मैं खुद नहीं बच सकता उसको, उससे तुझसे कैसे बचाऊं मैं? हाउ कैन आई सेव यू फ्रॉम डेथ व्हेन आई एम नॉट सेव फ्रॉम डेथ? और कुछ मांग ले। तो कहता है टाइम प्लीज, पूरा टाइम लेके पूरा लिस्ट बना देते हैं कि मृत्यु कैसे कैसे हो सकती है। मृत्यु शस्त्र से हो सकती है, अस्त्र से हो सकती है, जानवर से हो सकती है, जल में हो सकती है, थल में हो सकती है, आकाश में हो सकती है, सब पूरा कंडीशन, जहां जहां मृत्यु, रोग से हो सकती है, किसी के शस्त्र से हो सकती है, किसी जीव से हो सकती है। ब्रह्मा जी के द्वारा जितने जीव निर्माण हुए जो जीव के हाथों हो सकती है, सारा फुल प्रूफ प्लान बना लेता है और वो अर्जी सबमिट करता है। अभी मुझे इससे तो कहते तथास्तु, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में क्या होता है, ये सारे कंडीशन को बरकरार रखते हुए भगवान नरसिंह भगवान आते हैं, जो ब्रह्मा जी के द्वारा नियन निर्माण किए, किसी जीव की योनि में नहीं है वो, आधे मनुष्य आधे पशु आधे सिंह, और रूप में आके पूरा शस्त्र अस्त्र जल थल कुछ सब कुछ संभाल के फिर भी हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। रावण ने भी यही मांगा था शिव जी से और बल ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने भी उनको यही जवाब दिया था कि सॉरी सर। और जब रावण का वध हो रहा था तो शिवजी की पत्नी पार्वती भागभाग के शिवजी के पास गई, बोलो देखो देखो आपके भक्त का वध हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? तो मैं क्या कर सकता हूँ, जिनको भगवान को मारना है उनको कौन बचा सकता है, और जिनको भगवान को बचाना है उसको कौन मार सकता है? जो सारे देवताओं को थर्रा रहा था, ऐसे कहते हिरण्यकश्यप ऐसे ऊपर देखता था ना भवे उठाकर, तो देवता कांपते थे उधर ऊपर, और इंद्रादि देवताओं को घर में पानी भरने के लिए रखा था उसने, पानी भरना पोछा लगाना। हाँ रियली, भागवत पढ़िए आप, उसमें लिखा है जानबूझकर देवताओं का अपमान करने के लिए कि आप मेरे सामने कैसे तुच्छ हो। मतलब एक राक्षस भी ये सारे देवताओं से ऊपर चला गया और नौकर बनाया उसने अपने। वो रावण, रावण के तो सारे ग्रह जो थे ना, आपने बंधन करके आए ना उनको आप, रावण ने इन सारे ग्रहों को अपने सीढ़ियों पर रखा था और रोज उन पर पांव रख के चलता था वो सिंहासन पर। तो एक राक्षस भी सिद्धि के बल से देवताओं के ऊपर और नवग्रहों के ऊपर कब्जा कर सकता है, उनको नौकर बना सकता है। तो शनिदेव को भी जैसा दबा के रखा था पैर के नीचे, तो उसमें इतना कष्ट हो रहा शनिदेव को, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करके एक बार सर उठा लिया और अपना वक्र दृष्टि डाल दिया उसके ऊपर। तो फिर बेचारे की मति भ्रष्ट हो गई, भी सीता देवी के बनाया उसका और बहुत सारे स्त्रियों का उसने अपमान किया वगैरह वगैरह। कहने का तात्पर्य क्या है कि देवता भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, वो खुद जानते हैं कि हमारा भी लिमिट है। अगर आप बिल्डिंग बांधने वाले मंत्री के पास बोलेंगे जाके जल का व्यवस्था करो, हमारे घर में पानी नहीं आता है, तो रॉन्ग नंबर बोलेगा वो, इधर क्यों आए तुम, उसके पास जाओ, वो पानी का सप्लाई उसके पास में। और बिल्डिंग वाले के पास बिल्डिंग बनेगी और पानी वाले का बोलेंगे पर बिल्डिंग बनाने घर नहीं मिल रहा है, तो उसके पास जाओ, ऐसे बोलेगा। बिजली वाले के पास जाएगा तो वो बिजली वाले के पास उसका ही काम होगा और सब काम नहीं होंगे। उसी तरह से इस सारे देवताओं को कुछ ना कुछ शक्तिदान देने का अधिकार देकर रखा है। उसमें सूर्यदेव को आरोग्य हेल्थ डिपार्टमेंट देकर रखा है। सूर्यदेव की पूजा करने से आरोग्य प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है, तेज प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है। सूर्यदेव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग भारतीय लोग बहुत भाग्यवान लोग हैं कि इनका रोज दर्शन करते हैं हम लोग। कभी इंग्लैंड में जाकर देखना, अमेरिका में जाना कभी आप, कभी कभी इंग्लैंड में 6-6 महीने तक सूरज का दर्शन नहीं होता है, केवल बादल छाए रहते हैं बस। लोग इतने परेशान हो जाते हैं मन से, इतनी परेशान हो जाते हैं कि फ्लाइट पकड़ के पहले पता करते हैं गूगल में कि किस देश में सूरज चमक रहा है, पास में, जितना पास में हो सके, कहाँ से सूरज आ रहा है, कौन से देश में आ रहा है, उसका वीज़ा निकाल के, टिकट निकाल के उसमें आते हैं केवल सूरज का दर्शन करने के लिए, क्योंकि सूरज का दर्शन करने से मन में बहुत शांति और सुकून प्राप्त होता है। हम लोग आराम से घूमते हैं यहाँ पर, भारतवर्ष जो है सबसे भाग्यवान जीव है। तो सूरज की तरफ से मन की शांति, आरोग्य सब प्राप्त होता है, रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है, ऊपर से वो सबको उजाला देते हैं, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश भी देते हैं वो, हाँ, और हीट भी देते हैं। आपको लगता होगा भारत में कितनी गर्मी है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, जल रहे हम लोग यहाँ पर, तप रहे हैं। लेकिन आप विदेश में जाइए तो आपको -20 का मतलब क्या होता है समझ में आएगा, और वो लोग आपको बताएंगे एक बार हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन कर सकते हैं लेकिन -20 सहन नहीं कर सकते। उसको कहते हैं निहारिका अस्त्र, वो चंद्रदेव के पास में होता है, वो ठंडा करने का एकदम। यू गेट फ्रोजन, यू कांट मूव ओनली। अभी वृंदावन में जाएंगे तो जनवरी में 6 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो हम लोग 10 बजे तक रजाई से बाहर निकल नहीं सकते, ऐसा उंगली भी ऐसा फ्रोज हो जाता है। तो कहते हैं कि वो ठंडक का जो कष्ट है वो गर्मी से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सूरज भगवान आपको इतना आनंद दे रहे हैं, इसलिए भारतवर्ष में सब लोग, अमेरिकन लोग कहते हैं, इंग्लैंड लोग कहते हैं कि यहाँ का तापमान, वातावरण जो है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज जो है 12 महीने, उधर फेस्टिवल बनाते हैं, व्हेन सन कम्स देयर इज अ बिग फेस्टिवल, सन फेस्टिवल, हमारे पास 12 महीने सन फेस्टिवल है, नोबडी केयर्स। तो इसलिए हमको केवल एकले एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, और आगे कहा है कि इनके कहने पर सब करते हैं नृत्य। तो इसलिए हम सबको जानना चाहिए शास्त्र के आधार पर, भावनाओं के आधार पर जाना नहीं चाहिए। लेकिन देवताओं को भगवान ने बहुत शक्ति दी है, बहुत पावरफुल लोग हैं ये, और साथ साथ में इसमें प्रधान देवता जो है, जैसे शिव जी हैं, गणेश जी हैं, ये सब आपको भगवान की भक्ति भी दे सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति भक्ति नहीं मांगता है, उनके पास एप्लीकेशन रेडी रहता है, मंगलवार को भगवान गणेश जी के पास, सोमवार को शंकर जी के पास, और शुक्रवार को देवी के पास, सबका लिस्ट रेडी रहता है क्या क्या मांगना है उनसे। और कोई भी व्यक्ति उनके प्रेम की वजह से उनके पास पहुंचता नहीं है, खुद के ऊपर जो प्रेम करते हैं, खुद की इच्छा पूर्ण करने के लिए वहां पहुंचते हैं। तो देवताओं, आई थिंक दे मस्ट बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड एक्चुअली, कि जो भी आ रहा है इतनी हजारों में आ रहा है, अपना अपना काम करने को आ रहा है, वो बोले 6 किला ले लो, एक फ्लैट दे दो, हा? और 6 किला ले लो और एक सुंदर पत्नी दे दो, बहुत सस्ता में काम पटाना चाहते हैं, केवल बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं। और एक तरफ प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज ने इतना कष्ट सहन किया अपने पिताजी की तरफ से, इतना कष्ट सहन किया, तो भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने क्रोध से, भक्त पर अपराध किया इसलिए क्रोध से, क्रोध में आकर उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी वो चिल्लाते रहे, गर्जना करते रहे, मृत्यु को प्राप्त कराने के बाद भी, फाड़ के बाद भी अंदर हाथ डाल के उसका हार्ट तोड़ डाला उन्होंने फल की तरह, और फेंक दिया उसको ऐसा, फिर लात मार के उनको नीचे फेंक दिया। फिर हिरण्यकश्यप के जितने भाई थे, उतने सैनिक थे, वो भी उसको मारा उन्होंने सबको, इतना क्रोध था, वो सबको मारने के बाद भी गर्जना कर रहे थे, उस जोर जोर सांस ले रहे थे, इतना क्रोध था उनके मन में। देवता भी घबरा रहे हैं, हाँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अरे ये तो इनको कौन शांत करेगा अभी। तो बोलते हैं कि लक्ष्मी देवी आप तो उनकी पत्नी हो, मिसेस हिरण नरसिंह भगवान हो आप जाओ। तो वो कहते हैं कि मैं इनको पहचानती नहीं हूँ, आई डोंट नो हिम, मैंने उनको इस भाव में कभी देखा नहीं आज तक, तो हम दूसरे भाव में रहते हैं, ये तो अलग ही भाव है, आई कांट गो टू हिम, मैं पहुंच नहीं सकती वहां पर, अरे ट्रम्प कार्ड फेल हो गया, अभी क्या करना है। तो सब लोग ब्रह्मा की ओर देख रहे, ब्रह्मा जी आप तो बॉस हो सबके, नंबर वन के डेमिगॉड तो आप ही हो। वो कहते मैं भी नहीं, हिम्मत हो रही मेरी, शिव जी के पास दिखते हैं, आप तो महादेव हो, वो भी पीछे हट जाते हैं, सब गणेश जी सबको देखते हैं, सब लोग पीछे 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 हट जाते हैं, 33 करोड़ देवता पीछे हट गए, बोलते हम लोग नहीं जा सकते इनके सामने, इनका क्रोध कौन झेलेगा, पता नहीं क्या करेंगे, इतना लाल लाल आंखें उनकी। आखिर में सबकी नजर गिरती है प्रहलाद के ऊपर, 5 साल के बालक जैसा हमारा जनक, छोटा सा, बोले आप जाओगे, हाँ हाँ जाऊंगा ना मैं, उसके बाद माला देते हैं, उसके पीछे पीछे ब्रह्मा जी, उसके पीछे पीछे देवता लोग खड़े रहते हैं। आगे जाके एकदम बिल्कुल निर्धास्त माला पहनाता है, उसको देखते हैं भगवान शांत हो जाते हैं। जैसे सिंह अपने बछड़े को चाटता है ना, अपने सिंह के बालक को, छावे को, वैसे वो चाटते हैं प्रेम से उसको, और फिर वार्तालाप शुरू होता है उनका। तो भगवान कहते हैं, देखो बात बड़े संभाल के सुनो, क्या जो तुमको मैंने, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहन किया, इतना त्याग किया, इतना अत्याचार सहन किया, मेरे लिए सहन किया, मैं तुम्हें एक लोक दे देता हूँ, एक एक पूरे ब्रह्मांड का मालिक बना देता हूँ, मैं तुमको सिद्धि देता हूँ, क्या चाहिए बोलो, मुझे देना है तुमको आज। भगवान ऐसे नहीं कि वो लिस्ट लेके खड़े हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अभी इतना मेहनत किया अभी दे दो मुझे, अभी तो दे दो कम से कम, ऐसा नहीं बोल रहे हो। वो खड़े हैं आपने देने वाला व्यक्ति बोल रहे हैं, दे मुझे देना है, बताओ क्या दूं आपको। तो पता है वो क्या बोलते उस समय, बोलते भगवान मैं व्यापारी नहीं हूं, मैंने जो भी कुछ थोड़ा बहुत भजन किया है वो कुछ मन में हेतु रख के व्यापारी के रूप में नहीं किया है कि मैं बदले में कुछ मिलेगा, ये कपड़ा बेचूंगा तो पैसा मिलेगा, ये सोच के मैं व्यापारी नहीं हूं, मुझसे व्यापारी का मोह मत देना मुझे आप। बोले क्या चाहते हो फिर आप, मुझे कुछ देना है, आप मांगो कुछ, मांगो मुझसे। यही भक्त का और बाकी लोगों का में अंतर क्या है, हम लोग टूट पड़ेंगे, अरे वंस इन लाइफ टाइम मौका मिला है मांग लो इतना जन्म के बाद में मौका मिला है, जो मांगना है मांग लो, अभी जो चाहिए वो मांग लो। वो नहीं मांग रहे हैं, जो सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ देने की शक्ति रखते हैं, वो उनके सामने खड़े होकर खुद पूछ रहे हैं क्या चाहोगे बोलो। बोल रहे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहता, नहीं कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो बोलते मुझे एक चीज का डर है, वैष्णवों का और भक्तों का अपराध मुझसे हाथ से हो ना जाए, ये मुझे वरदान देना। दिस इज द ओनली फियर आई गॉट, कि मुझे वैष्णवों का मेरे हाथ से अपराध हो जाएगा, आपके भक्तों का तो वो मुझ मेरे हाथ से नहीं होना चाहिए बस। और भक्तों का संग कभी छूटना नहीं चाहिए, उनकी सेवा कभी मुझसे छूटनी नहीं चाहिए, ये वरदान है। चैतन्य महाप्रभु ने भी श्रीधर कोलवेचा को बुलाया था जंगल से, वो मायापुर में लेके जाते लोगों को, लेके जाते हैं वहां पर, तो उसको बोला श्रीधर मांग ले, क्या मांगना है मांग लो, सिद्धि दे दूं, लोगों को लेकर क्या करूंगा मैं, एक लोक दे दूं आपको, उसको लेकर क्या करूंगा, धन दौलत नौकर चाकर महल दे दूं, राजा बना दूं आपको, वो उसको उनके क्या करूंगा मैं। ये सारी भगवान उसके एक लिस्ट पढ़ा देते हैं, जो लिस्ट हम लेके जाते हैं भगवान के पास, अब भगवान को ना 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 करना पड़ता है, इधर भगवान लिस्ट लेके जा रहे हैं, बोले क्या देव आपको, ये मेनू पूरा ले लो, सबको मना करते, बाद में क्या बोलते हैं, अगर आपको देना ही इतना है तो एक काम करना, जैसे आप मेरे गांव में हर रोज सवेरे आकर मेरे से दो तीन घंटा घिसा घिस करके आखिर में फ्री में केले के पत्ते उठा के लेके जाते थे ना, वैसे आप जन्म जन्मांतर तक मेरे दुकान में आना, बहस करना और आखिर में मेरे केले के पत्ते उठाकर फ्री में चले जाना। मतलब क्या मांगा उन्होंने, जिसमें जो करने से आपको खुशी हो रही है वो मेरे जीवन में होता रहे, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। खुद के लिए कुछ नहीं मांगा कि मेरे पेड़ को अच्छे केले लगने दो, अच्छे अच्छे कीमती पत्ते मेरे केले पे आने दो, मेरे झोपड़ी के ऊपर एक अच्छा पपीता रोज आने दो, इसका अच्छा भाव मिलेगा मुझे, ऐसा नहीं बोलते वो। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि भक्त कृष्ण भक्त निष्कामा, उसमें कोई कामना नहीं होती मन में उसकी, एक ही इच्छा करता है हमेशा कि आपकी सेवा बनी रहे बस, हमेशा। करिष्ये वचनम तव नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव, अभी मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपकी इच्छा, आपका शब्द, आपकी वचन मैं पूरा करता रहूं। तो इसलिए देवताओं को, सब लोगों को वंदन करना चाहिए, लेकिन देवताओं से कामना नहीं करनी चाहिए। क्या बताया मैंने श्लोक में, एक पढ़ा मैंने बीच में आपके साथ, कामैस्तस्तैर ऋतज्ञाना, जो काम वासना की वजह से अपनी बुद्धि को खो बैठते हैं। एक और एक श्लोक है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, जिसको एक बार काम वासना से वश हो गया उसको न लज्जा आती है, ना भय होता है, ना कुछ भी नहीं होता है, उसको सब कुछ भूल जाता है वो कौन है क्या है। तो वैसे काम वासना मतलब केवल सेक्स नहीं है, काम वासना मतलब दुनियादारी का जो भी आपको चाहिए, पद चाहिए, अधिकार चाहिए, शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, आपको धन दौलत चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, संतान अच्छी चाहिए, कुल अच्छा चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, बहुत सारा डिग्री होनी चाहिए, ये सब काम ही है। भगवान को भूल कर की हुई इच्छा को काम कहते हैं। तो उस काम वासना के वश में आकर जीव अपनी बुद्धि खो बैठता है, और वो बुद्धि खोने के बाद में अपने कठोर भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए देवताओं के पास जाता है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अपने न कंट्रोल करने वाले अनियंत्रित काम वासनाओं को पूर्ण करने के लिए देवताओं के पास जाकर बार बार मत्था टेक कर अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मांग करते रहता है। जैसे बच्चा कैसे है, मम्मी चॉकलेट चाहिए, मम्मी खिलौना चाहिए, रोता है, पैर पटकता है, दरवाजा पटकता है, जमीन पर लेट के रोता है रास्ते में, अब भी चॉकलेट चाहिए। वैसे ही हम लोग हैं, उसी तरह से एग्जैक्टली है, ये दरवाजे से वो दरवाजे में, ये देवी के पास से वो देवी के पास, वो बोले वो मान जाओ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है, उसके पास चले जाओ, उधर गाणगापुर में जाओ, उधर वो देवी के पास जाओ, उधर वृंदावन में वो देवी के पास जाओ, वो बहुत नवस तुरंत मन्नत प्राप्त कर लेते हैं, लोग पहुंच जाते हैं वहां पर। वैसे हम लोग भी हैं बच्चों की तरह, अपने अलग अलग इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अलग अलग दरवाजे पर दस्तखत लगाते हैं। लेकिन भक्त जो होता है, कामस्तैत्य ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो कहते हैं वो मेरे भक्त नहीं है, और बाद में बताते हैं भगवान कि उन देवताओं को उनकी इच्छा पूर्ण करने की शक्ति भी मैं देता हूं। जो लोग मुझे भूलकर देवताओं के पास जाकर मांगते हैं उनको भी उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति मैं ही देता हूं, और देवता लोग भी ये बात जानते हैं कि मैं जो तथास्तु कह रहा हूं वो शक्ति भी उन्होंने दी गई है, उनकी उनकी दी गई है। लेकिन इन सारे देवताओं के पास में एक शक्ति नहीं है। जैसे हिरण्यकश्यप ने बोला मुझे अमर कर लो, तो ब्रह्मा ने कहा सॉरी। शिव जी को नारद रावण ने पूछा तो उन्होंने कहा सॉरी। ये एक बात कोई देवता नहीं कर सकता है, वो केवल मुकुंद कर सकते हैं। वो जन्म मृत्यु के चक्र से अगर मुक्ति पानी है तो केवल एक व्यक्ति है उसके लिए, और किसी को शक्ति नहीं है। और ये सारे देवता भी उन्हीं के शरण में रहते हैं, हाँ सभी देवता उनके शरण में रहते हैं। तो इसलिए हम देवताओं का अनादर नहीं करते हैं, देवताओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। बड़े श्रेष्ठ पुरुष अगर हमारे घर में आते हैं उनका सत्कार करते हैं, लेकिन शरण जो है वो केवल कृष्ण के लेते हैं। सबका सत्कार करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। जैसे कि एक पतिव्रता स्त्री होती है ना, वो कई पुरुषों की मेहमान के रूप में सेवा कर सकती है। कोई पति से भी श्रेष्ठ कोई व्यक्ति रहेगा, कोई उसका मालिक रहेगा, दुकानदार का बॉस रहेगा उसका, तो घर में आएगा तो खाना खिलाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन दिल केवल पति को देंगे अपनी। उसकी श्रद्धा जो है, उसका समर्पण जो है, वो एक व्यक्ति के लिए है। वो सेवा कई लोगों की कर सकती है, लेकिन पतिव्रत का मतलब क्या है, उसका शरणागति जो है, उसका जो स्वत्व है, उसका जो जमीर है, वो एक व्यक्ति के चरणों में समर्पित है। उसी तरह से भक्त होता है, वो सभी देवताओं का आदर करता है, सब देवताओं को पूजा करता है, सभी देवताओं का सम्मान करता है, उनका भजन पूजन करता है, मत्था टेकता है, लेकिन उनकी श्रद्धा जो है वो है परम भगवान श्री कृष्ण के लिए। इसलिए भगवान अंतिम गीता में कहते हैं सर्वधर्मं परित्यज्यं माम एकं शरणं भज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये शक्ति किसी के पास नहीं है, आपके सारे पापों को नष्ट करके आपको जन्म मृत्यु से चक्र से मुक्ति दिलाने की शक्ति किसी भी देवता में नहीं है। थोड़े थोड़े पाप आपके यहाँ से वहाँ अल्टर कर सकते हो, और जो भी आपको देना है वो इसी दुनिया में देते हैं बस, वहाँ दुनिया उस दुनिया में उनको कोई अधिकार नहीं है। जैसे एक होता है जेलर, जेल में, और जेल में गए वो अपना है ना, क्या नाम उसका, सुनील दत्त का लड़का, क्या नाम, संजय दत्त, वो जेल में गया तो जेलर से पैसा देके उसने फिर फाइव स्टार खाना मंगाना शुरू किया, फिर जेल में वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी दिया उसको, फिर उसको गद्दे भी दिए, फिर उसको एयर कंडीशन भी दिया, उसको शायद 250 चैनल का टीवी भी दिया होगा, उसको बहुत सारा चीज़ दिया होगा। लेकिन जेलर के हाथ में वो शक्ति नहीं कि तुमको जेल से मुक्त कर दे, समझ में आपको आया, जेलर से वो बहुत पटा के उसको पैसा दे के उसको जेल में अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सोना, अच्छा एसी, अच्छा टीवी सब करेगा वो, लेकिन जेलर को बोलेगा ये पैसा ले लो मुझे छोड़ दे यहाँ से, वो छोड़ नहीं सकता उसको। तो देवता लोग भी ऐसे होते हैं, वो आपको इस दुनिया में रहते हुए दुनिया का जीवन को थोड़ा बहुत अच्छा करने के लिए आपको फैसिलिटी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे भैया मुझे ना प्रॉब्लम वो नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हूँ, मुझे जरा मुक्त करा दो ना, बोले सॉरी सर ये रॉन्ग नंबर है, यहाँ पर ये सब नहीं मिलता है, हम भी उसी लाइन में खड़े हैं जिसमें आपको भी खड़ा होना है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। हाँ ज्ञान होने पर आदमी को समझता है कि मैं कौन हूँ, किसका अंश हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ पर जाना है, किस जगह पर जाके मेरे एप्लीकेशन देना है, कहाँ मेरा काम होगा, ये सब ज्ञान से पता चलता है। भावनाओं के पर नहीं चलते, कह रही है इसने कहा उधर जाओ तो उधर उसका बेटा ठीक हो गया, उधर जाके लाइन लगा लिया। वो कहता है कि उसकी शादी वहाँ जाने के बाद हो गई, वहाँ जाके लाइन लगा लिया, और उसकी बेटा वहाँ पर अच्छा पास हो गया तो वो जगह पर तो अभिषेक कराओ। ऐसे जाएंगे तो फिर कितनी जगह भटकेंगे आप एक काम के लिए। एक जगह जाओ और अंतिम कल्याण वहाँ पर कर लो, वो है श्री कृष्ण भगवान। इसलिए वो शंकराचार्य ने भी कहा था, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते मूढ़मते, हम लोग को बुलाया उन्होंने, हम लोग को बुलाया है मूढ़मते, मतलब जिसकी मति मारी गई है, मूढ़ हो गया व्यक्ति। वो कहते हैं अभी दुनिया पर भटकना मत, यहाँ वहाँ भज गोविंदम भज गोविंदम, कितनी बार जन्म लोगे कितनी बार मरोगे यही तड़पते रहोगे, अभी गोविंद को भजोगे तो ही यहाँ से मुक्त हो जाओगे। स्वयं जिन्होंने जीवन भर मायावाद का प्रचार किया, मुक्ति का प्रचार किया, उन्हें अंत में क्या कहा कि ये सब जो मैंने प्रचार किया है भगवान की इच्छा से किया है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं मरने के पहले जाने के पहले भज गोविंदम भज गोविंदम, उनको ही शरण में चले जाओ। तो एनी वे हम सूर्य भगवान के मंदिर में आए हैं, ये मंदिर बहुत प्राचीन है, ये करीब कई एकड़ जगह में बनाया गया है और ये रथ के आकार में बनाया गया है। आप गौर से देखोगे तो इसके नीचे पहिए रखे गए हैं सिंबॉलिक लक्षण के रूप में। हाँ, तो ये जो पहिए हैं वो रथ के भावना से बनाए हैं, क्योंकि सहस्त्र हस्त्र अश्वों को लेकर सूर्यदेव रोज यात्रा करते हैं। एक सूर्यदेव ऐसे व्यक्ति हैं, भगवान देवता, कोई लीव लेते नहीं, वो सिक लीव, कैजुअल लीव, हाँ, प्रिविलेज लीव, यात्रा लीव कोई लीव लेते नहीं। वो जब से हमारा जन्म हो गया तब तक वो रोज अपना काम कर रहे हैं, एवरी सिंगल डे। हमको उनका बहुत ऋणी होना चाहिए, यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू हिम। सूर्य भगवान की दिशा में खड़े होकर अगर हम भोजन बनाते हैं पूर्व दिशा में, तो भोजन में स्वाद आता है बहुत। इसलिए हर एक घर का किचन जो है वो पूर्वाभिमुख होना चाहिए, सूर्यदेव जहाँ से आते हैं उस दिशा में हमारा किचन और चूल्हा होना चाहिए, और उनको उनकी तरफ मुख करके भोजन बनाना चाहिए। तो ये मंदिर में जब मुगलों ने अटैक किया कई सैकड़ों साल के पहले, तो ये भ्रष्ट कर दिया उन्होंने, तब से इसमें भगवान की सेवा, सूर्यदेव की सेवा करना समाप्त हो गया। आज केवल एक सुंदर मूर्ति जैसे एक मंदिर बच गया है, केवल उसका वो आर्किटेक्चर जो है, उसका जो स्थापत्य शास्त्र है, जो उसका सुंदरता है, उसको देखने के लोग आते हैं। लेकिन हमारे झमकानाथ जी कह रहे थे, प्रभु जी अंदर तो कुछ नहीं, इसके अंदर मंदिर को कौन देखता है, मंदिर के अंदर कौन है उसको देखने के लिए आते हैं। और मंदिर अगर भव्य है तो वो अंदर है इसलिए शोभा पाता है। अभी हम लोग कल गुंडीचा में गए थे ना, आप कभी रथ यात्रा में आना और गुंडीचा में देखना कितना वैभव है उसके अंदर। और गुंडीचा में जब भगवान रह रहे हैं तब जाकर जगन्नाथ मंदिर में देखना क्या स्थिति है, आपको लगेगा इतना भव्य मंदिर है, एम्प्टी है, इसके अंदर तो भगवान तो है नहीं। कल ये अनुभूति हुई, अरे सब कुछ है लेकिन भगवान तो नहीं, भगवान तो वो मंदिर में। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, ये आर्किटेक्चर नहीं है, भगवान है जो अंदर बैठे हैं, जिनके लिए मंदिर बनाया गया है, जिनके वजह से मंदिर की शोभा बढ़ती है, चाहे वो 50 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, 10,000 करोड़ का मंदिर हो, उसकी शोभा किसकी वजह से है, उसके अंदर ठाकुर जी होने चाहिए। इसलिए सब लोग आते हैं इधर, घूमते हैं, बगीचा देखते हैं, पेड़ देखते हैं, फोटो निकालते हैं, अलग अलग चले जाते हैं, लेकिन वो जो लाभ आपको होगा वो नहीं होता है उसके अंदर। तो फिर एक नरसिंह देव नाम के राजा थे बहुत साल पहले के, उन्होंने जब ये मंदिर का पूजा बंद हो गया तो इसका अरुण स्तंभ निकाल के उन्होंने जगन्नाथ जी के सामने लगा दिया, जो आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने अरुण स्तंभ है। कई चीज़ यहाँ से उठाकर फिर जगन्नाथ मंदिर में लगाई गई है। तो ये सूर्यदेव की बहुत कहानी है, सूर्यदेव कितने महान हैं, कितनी शक्ति है उनके अंदर। ये सूर्यदेव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनका विवाह जो है वो उषा देवी से हुआ था। हाँ, सब लोग सुन रहे हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उषा देवी जब उन्होंने अपने पति को देखा तो उनका आँख खोल नहीं सकी, वो इतना तेज सूर्य का, इतना तेज जो पूरे विश्व को पूरे ब्रह्मांडों को प्रकाश देते हैं, तो वो आँख ही नहीं खोल सकी। और कभी कभी क्या होता है बहुत तेज से डर भी लगता है, तो वो थोड़ा डर भी गई, अरे बाप रे कैसे होगा मेरा घर गृहस्थी इनके साथ में इतना लाइट कि मैं देख ही सकती नहीं उनको। जब पहले बार संबंध हुआ तो वो डरी हुई थी बहुत कि कैसे होगा, हाउ आई कैन मैनेज दिस। तो सूर्यदेव ने कहा अभी जो संतान होगी उससे सारा विश्व डरेगा, क्योंकि तुम डर कर मेरे पास में आई थी। तो इस संतान जो पुत्र हुआ उसका नाम होगा यमराज, और यमराज से सब डरेंगे। तो उषा देवी को बड़ा दुख हो गया कि अरे मैंने गलती कर दिया। तो उसने अपनी अगली बार अपने अच्छा काउंसलिंग लिया, हाँ माता पिता से गुड काउंसलिंग, अपने मन को तैयार किया। फिर पति के पास संबंध हो गया उनका, तो बड़ी प्रसन्नता से सेवा की उनकी उन्होंने। तो सूर्यदेव ने कहा अभी कन्या होगी आपको, और ये कन्या नदी रूप भी होगी, और उस कन्या की शरण जो प्राप्त करेगा, कन्या के जल में जो स्नान करेगा, वो बड़े भाई के भय से मुक्त हो जाएगा। तब एक भाई का बताया और भाई मुक्त होने का साधन बताया, तो उसको कहते यम और यमी, हाँ यमराज के भय से मुक्त करने वाली यमुना नदी। तो ये दोनों सूर्यदेव के पुत्र हैं, पुत्र और पुत्री, और शनिदेव भी सूर्यदेव के पुत्र हैं। लोग शनि से बहुत डरते हैं कि शनि दशा, वक्र दशा, महादशा, साढ़े साथी, पता करता नहीं क्या क्या पूछते रहते, वो कभी है, वो कभी है। लेकिन शनिदेव का ऐसा महात्म्य है कि शनिदेव भगवान के परम 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 भक्त हैं। और जैसे शिव जी को, गणेश जी को, पार्वती जी को, वे प्रमुख देवताओं को आपको कृष्ण भक्ति देने की शक्ति है, वैसे शनिदेव को भी आपको कृष्ण भक्ति देने की शक्ति है। लेकिन बेचारे के पास कोई मांगता ही नहीं, खाली तेल चढ़ाते बोलते कि भाई तुम्हारा जरा दशा, थोड़ा वोल्टेज कम करना उसका, जरा वो ज़्यादा वोल्टेज है उसका, यही बोलते हैं। क्योंकि ज्ञान नहीं ना, स्वार्थ में इतने लिप्त हैं कि वो केवल अपना 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 ही सोचते रहते, उसके परे को सोच ही सकते नहीं, दे कांट गो बियॉन्ड। तो आगे जब उनकी एक कहानी मैंने आपको आगे की पहली बता दी, लेकिन पहली जब उनका शादी हुआ था तो सूर्यदेव को तेज देखकर वो पत्नी उनकी चली गई, मतलब कहाँ चली गई, नासिक चली गई, ऋषि के आश्रम में जाकर रहने लगी। और उन्हें एक अश्विनी का रूप धारण किया, अश्विनी मतलब घोड़ी, और वो रूप बदल कर वहाँ पर एकांत में रहने लगी डर के मारे। तो सूर्यदेव भी उसके पीछे पीछे आए और उन्होंने भी अश्व का रूप धारण किया और अपनी पत्नी को देखा कि ये मेरी पत्नी है, तो उसके पीछे भागने लगे वो, तो वो अश्विनी भी भागने लगी। तो ये देखकर वो आश्रम के जो ऋषि कुमार थे वो हंसने लगे उनको देखकर, ये भी क्या नजारा है, सूर्यदेव घोड़ा बनकर भाग रहे हैं, उनकी पत्नी घोड़ी बनकर भाग रही है। तो ये देखकर सूर्यदेव की पत्नी ने शाप दिया उनको कि आप लोग हमको देख के हंस रहे हो, आप लोग वट के वृक्ष बन जाओगे। तो पांच ऋषि कुमार वहां पर पांच वट बन गए, तो क्या बना वो, पंचवटी। उसके बाद में उनका संबंध हुआ, उसके बाद यमराज हुए, उसके बाद में यमुना देवी, उसके बाद शनिदेव। तो ये सूर्यदेव जो है वो ज्ञान का भी सागर है, बहुत ज्ञान का स्रोत है। जब हनुमान जी जन्म हुआ उनका, तो जन्म होते ही उन्होंने आकाश में देखा, क्या देखा, ऑरेंज 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 देखा आकाश में, बोले अच्छा संतरा है, खाना चाहिए उसको। तो उड़ पड़े, वो ये शक्ति थी उस बालक में। तो सूर्यदेव डर गए, उन्होंने इंद्रदेव को कंप्लेंट किया कि आ रहा है मेरे ओर, खा जाएगा मुझे, क्योंकि तो बड़ी तेजी से और बड़े निश्चित रूप से वो आ रहा था, और अभी कुछ ही क्षणों में खा जाएगा। तभी उन्होंने इंद्रदेव ऐरावत पर बैठकर वज्र लेकर आए, और उन्होंने वज्र मारने के पहले बच्चे ने देखा अरे और एक नया फल आया, तो उसकी ओर मुड़ गए वो, एक संतरे का था दूसरा और एक फल आया, तो वहां पर मुड़े, तो उन्होंने वज्र का आघात किया उसके ऊपर। अभी वज्र देखो इतना भयंकर अस्त्र है वज्र, एक बालक को मारने के लिए वज्र का इस्तेमाल किया। तो वज्र उनके ये चेहरे पर, जो हनुवटी है ना, यहाँ पर लगा, उसको लग के वो नीचे गिर गए, आकाश से जमीन पर गिर गए बेहोश होकर। तो वायु के पुत्र थे वो, तो वायु को बड़ा क्रोध आया, ये क्या तरीका है, एक बालक को मारने के लिए वज्राघात, तो राक्षस को मारने के लिए, भयंकर राक्षसों को मारने के लिए वज्र का उपयोग करते हैं, तो ये बालक को मारने के लिए वज्र का उपयोग किया। तो उन्होंने क्या किया, वायु के अंडर क्या था, पूरी दुनिया में वायु का सप्लाई करना वायुदेव के अंडर है, तो वायुदेव ने झट से वायु सप्लाई सबका बंद कर दिया। तो आपको लगता होगा कि हवा बंद हो गई, हवा बंद नहीं हो गई, जोड़ों को भी मुड़ना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारे जोड़ों की मूर्ति है, हाथ देखो ऐसा हो रहा है ना, ये वायु की वजह से होता है, अंदर भी वायु होते हैं, 10 प्रकार के वायु होते हैं शरीर में, सब जगह अलग अलग कार्य करते हैं। दिमाग में भी वायु होता है, रीढ़ की हड्डी में भी वायु होता है, लोग बोलते ना अर्धांग वायु, ये वायु वो या वायु, वात रोग संधिवात, तो क्या उसका मतलब है? क्योंकि हमारी सारी मूवमेंट्स जो है ना वो सब वायु की वजह से होती है, हमारा हजम भी वायु की वजह से होता है। तो वो सारे वायु को रोक दिया उसने, हर प्रकार के वायु को, जाओ अभी मैं गुस्से में हूँ अभी चलो। सब देवता लोग परेशान हो गए, क्या हो गया, एकदम सफोकेशन क्यों हो रहा है? तो सब इंद्र के पास गए, इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, तो समझ गया कि ये वायुदेव की वजह से हो गया। सब देवता लोग उतर के नीचे आए, जहाँ गोद में लेकर वायुदेव बैठे हुए हैं क्रोध में और दुख में कि मेरे नन्हे से बालक को वज्राघात करके उसकी हनुवटी तोड़ दी और उसको बेहोश कर दिया। तो देवताओं ने मंत्र बोलकर उनको जीवन दान दिया और उनके वायुदेव के क्रोध को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने अपने पास क्या क्या वरदान देने लायक वरदान है वो सब दे दिए उसको। अभी इतना बड़ा संकट आ गया तो शांत तो करना ही होगा, तो मेरे पास क्या है बेस्ट मैंने भी दे दिया, उसने के पास क्या बेस्ट है उसने भी दे दिया, सबने अपना अपना बेस्ट वरदान दिया उसको। तो सूर्यदेव ने कहा कि मैं ज्ञान दूंगा आपको, लेकिन मेरा एक ही प्रॉब्लम, मुझे लीव नहीं मिलता है, मैं रोज काम पे जाता हूँ, तो मैं ज्ञान दूंगा लेकिन एक ही कंडीशन है कि मैं मेरे रथ पे चलता रहूंगा, हजारों अश्वों का रथ है वो प्रकाशमान, मेरा स्पीड में मैं चलता रहूंगा, मुझे रुकना, मुझे स्लो करना मुमकिन नहीं है, फास्ट करना भी मुमकिन नहीं है। चलो भाई आज का काम जल्दी करके छोड़ा, 1 घंटा जल्दी आऊंगा और 1 घंटा स्पेशल क्लास दूंगा आपके लिए, ऐसा भी नहीं है। आपको मेरे रथ के सामने मेरी तरफ मुख करके उल्टा दौड़ना पड़ेगा जब तक मेरा क्लास खत्म ना हो जाए। तो सूर्यदेव चल रहे हैं, हनुमान जी इतने उत्साही हैं, हाँ अभी मैं कहूँगा अगर आपको मेरे सामने उल्टा दौड़ना पड़ेगा आप दौड़ेंगे क्या? बोले नहीं चाहिए आपकी कथा, आपको हम लोगों को नहीं चलना है उल्टा। लेकिन एक विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, शिक्षक बोल रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है लेकिन पढ़ना है मुझे आपसे, बोले एक ही तरह पढ़ सकते हो, रथ के आगे जोड़ोगे तो पढ़ सक, मैं पढ़ाऊंगा, मतलब एक बार रथ चल रहा है तो मैं अपना आपके, मेरे मुख फ्री है मेरा, मैं बोल सकता हूँ और आप सुन सकते हो। तो हनुमान जी उल्टा दौड़े हैं उनके लिए और पूरा ज्ञान, जितना ज्ञान आप कह सकते हो वो सारा ज्ञान सूर्यदेव ने हनुमान जी को दिया। और भगवद गीता पढ़िए आप, उसमें लिखा है इमम विवस्वते प्रोक्तन, इनका नाम सूर्यदेव का है विश्व विवस्वान, राजा का नाम, सूर्य लोक में जो राज्य करते हैं उसका नाम विवस्वान है। भगवान कहते हैं कि पुरातन काल में सबसे पहले ये गीता का ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया था, फिर उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, फिर इक्ष्वाकु ने मनु को दिया, फिर बीच में भंग हो गया लाइन में, फिर आपको मैं दोबारा ये ज्ञान दे रहा हूँ, ये मत समझना कि पहली बार आपको दे रहा हूँ, ये ज्ञान मैंने कई बार पहले बहुत लोगों को दे चुका हूँ, लेकिन सबसे पहले उसके प्राप्त करने वाले सूर्यदेव थे। तो भगवद गीता के अनुसार, प्रमाण के अनुसार पूरी भगवद गीता सूर्यदेव जानते हैं जो भगवान ने अर्जुन को सुनाई। तो एक और उनकी कथा आती है, एक राक्षस था जिसने बहुत तपस्या किया हिमालय में, और तपस्या का क्या उसका ये था उद्देश्य क्या था कि वो हर साल तपस्या करने के बाद में जब ब्रह्मा जी प्रकट होते थे तो वो वरदान मांगता था कि मुझे ऐसा कवच और कुंडल पहना दो तो कोई बाण मुझे भेद नहीं सके। तो 1 साल तपस्या किया तो 1 कवच कुंडल, ऐसे वो 100 साल तपस्या करता है, यहां के नहीं स्वर्गीय 100 साल। तो हर साल के बाद में उसको, सॉरी 1000 साल तपस्या करता है और 1000 कवच उसको प्राप्त होते हैं। तो जब 1000 कवच प्राप्त होते हैं तो ब्रह्मा जी फिर प्रकट होते हैं, होते हैं और मुझे वरदान चाहिए कि मेरा कवच किसी को भेदना नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं नहीं कवच तो भेदा जाएगा कभी कैसे कैसे, उसमें कुछ चाहिए आपको डिस्काउंट तो मांग लो। तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति 100 साल तपस्या करेगा उसी के बाण से 1 कवच टूट सकता है, ऐसा वरदान दो मुझे। मतलब ऐसा मानो ऐसा प्लानिंग कर दे कि मैं मरूंगा ही नहीं, आई विल, मतलब इतना दिमाग लगाया होगा उसने, बाप रे इतना मेहनत किया, ऊपर से इतना सोच समझ के वरदान मांगा कि 1 कवच भेदने के लिए किसी भी ऋषि मुनि तपस्वी को 100 साल तपस्या करना पड़ेगा। मतलब अभी 100 साल से 1 जाएगा, 1000 कवच को इतनी लंबी आयु किसकी होगी, और होगी तो भी वो इतना तपस्या कैसे कर पाएगा। तो जैसे ही ये वरदान प्राप्त हो गया तो वो समझ गया कि मैं तो अमर हो गया, अभी नोबडी कैन किल मी। ऊपर से क्या करता था, कोई भी ऋषि मुनि अगर तपस्या को बैठ गया तो उसको जाके मार देता था। मतलब एक साल तो भूल ही जाओ, बहुत जल्दी ही 100 साल तो बहुत दूर की बात है। तपस्या को कोई बैठ गया तो 100 साल उसका होना ही चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा कोई डेंजर होना नहीं चाहिए, तो उसको तुरंत आके खुद ही मार देता था। अभी ऋषियों का मुनियों का वध किया जा रहा है तो बहुत बड़ा अपराध है भगवान की दृष्टि से। तो सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, तो जा के संतों को मार रहा है, ये तपस्या करने को देता ही नहीं किसी को। हिमालय में तपस्या का स्कूल बंद हो गया है, अभी तपस्या बैठते ही वो मार देता है। तो सब लोग विष्णु के पास गए। अब ये भी एक प्रमाण है, आपने कितना बार पढ़ा होगा शास्त्र में, कई हजारों बार देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए, भगवान त्राहि माम त्राहि माम, कंस के द्वारा अत्याचार हो रहा है, भूमि देवी रो रही है, रावण के द्वारा अत्याचार हो रहा है, सब देवता लोग जा रहे हैं, प्रहलाद पर अत्याचार हो रहा है, सब देवता लोग जा रहे हैं, नरसिंह भगवान आइए। दोबारा जाते हैं विष्णु के पास, बोलते क्या है शस्त्र कवच का क्या करें, ये तो वरदान पाके अगर चुप बैठता तो भी अच्छी बात थी, लेकिन वरदान प्राप्त करने के बाद कोई चुप नहीं बैठता है, उस वरदान का अहंकार उत्पन्न होता है, फिर वो अत्याचार करता है, उसको घमंड पैदा होता है, सब जीवों को कष्ट देता है। तो विष्णु कहते डोंट वरी, मैं समाधान कर लूंगा उसका। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने नर और नारायण का अवतार लिया, अर्जुन नर बनकर आए और स्वयं नारायण बनकर आए, तपस्वी बनकर आए। और कहाँ गए वो, हिमालय में गए। हिमालय में कैसा है कि 100 साल तपस्या करने के बदले में 1 साल में आपको 100 साल का फल हिमालय में मिलेगा। आम जगह पर आप 1 साल तपस्या करेंगे, 100 साल तपस्या करेंगे, वही फल हिमालय में बद्रीनाथ में करेंगे जाके तो 1 साल में आपको मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, 2 जन नर और नारायण ऋषि तपस्या के लिए बैठ गए। 1 साल जब पूरा हुआ दोनों का, तो उसमें से एक गए और उन्होंने सहस्त्र कवच से युद्ध किया और दूसरे ने तपस्या आरंभ अपनी चालू रखी और 1 साल तक लड़ते रहे, उसको फिर एक कवच निकाल दिया उसका, तब इसका 1 साल पूरा हो गया। तो ये जाके तपस्या में बैठते थे और जिसका 1 साल पूरा हो गया वो युद्ध करता था, तो इसके द्वारा दूसरा कवच, फिर इसका 1 साल तपस्या पूरा हो गया, फिर उसके द्वारा तीसरा कवच, ऐसे करके उन्होंने बहुत ट्रिक करके इसको 1 साल युद्ध में बिजी रख के एक एक ने अपना अपना 1 साल पूरा किया, मतलब 100 साल पृथ्वी के पूरे किए तपस्या के, ऐसे करके 999 कवच उसके निकाल दिए। तो डर गया वो, उसको लगा कि तो इम्पॉसिबल था, वो पॉसिबल हो रहा है अभी, मुझे लग रहा था कि मुझे कोई नहीं मार सकता है, लेकिन ये इन्होंने इतना अच्छा युक्ति करके हिमालय में जाके 100 साल के तपस्या को 1 साल में कन्वर्ट करके, 2 आदमी बैठ के, 1 आदमी तपस्या 1 आदमी युद्ध में बिजी करके मुझे फंसा के उन्होंने 999 कवच नष्ट कर दिए, अभी एक ही बचा है, अभी तो मरने का जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। तो भाग के सूर्यदेव की शरण में गए, बोले बचाओ बचाओ त्राहि माम त्राहि माम। तब सूर्यदेव ने नारायण ऋषि भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान इसे माफ कर दो, मैंने इसको शरण दे दी है तो मेरे शरण का आदर रखो, उसको मत मारो। तो वही सहस्त्र कवच जो है वो अगले जन्म में कर्ण बन कर आया, सूर्य पुत्र कर्ण बन कर आया। जब कुंती देवी ने सूर्य का मंत्र उच्चारण किया तो सूर्य के पुत्र के रूप में यही राक्षस, भयंकर राक्षस होता आतंकवादी, वो कर्ण बन कर आया और जनता के सामने कैसा दिखता है, वो दानशूर सद्गुण संपन्न, ऐसा वैसा, लोग सहानुभूति व्यक्त करते हैं, भगवान ने उस पर अत्याचार किया, कितना बैड लकी था वो, पहले से ही कुंती पुत्र होने पर भी सारथी का पुत्र बना और सुत पुत्र के नाम से निंदा हुई उसकी, कितना अनजस्टिस हो गया उसके ऊपर। लेकिन हम लोग भूलते हैं उसके इतिहास को, वो इतना भयंकर आतंकवादी राक्षस था पहले जन्म में, उसके फल के स्वरूप उसको ऐसा जन्म मिला। और फिर उसका आखिरी कवच किसके द्वारा निकाला गया, वही क्या कहते हैं उसको, अर्जुन के पिताजी कौन थे, इंद्रदेव, उन्होंने फिर ट्रिक करके दान में मांग लिया उसका कवच, क्योंकि वो कवच पृथ्वी के किसी भी व्यक्ति के हाथ से छेदना मुमकिन नहीं था, वो खुद के हाथ से ही वो काट सकता था, तो अपने दान देने के गर्व के प्रभाव से, उन्होंने दान के गर्व से उसको काट के दे दिया, लेकिन उसको भगवान की योजना थी उसको मारने की, इसलिए दान के रूप में उसको दिया गया, फिर अर्जुन के द्वारा उसका वध हो गया। तो वो पिछले जन्म का सहस्त्र कवच था जिसको सूर्यदेव ने आश्रय दिया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सूर्य भगवान को सब लोग प्रार्थना करो, प्रणाम करो और उनके द्वारा हमें तेज और बुद्धि और आरोग्य प्राप्त हो। लेकिन किसके लिए प्राप्त हो आरोग्य और बुद्धि, ताकि हम उस बुद्धि और आरोग्य से भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकें। आपके पास जो शक्ति है वो मांग रहे हैं, लेकिन हम केवल कृष्ण भगवान के लिए उसको मांग रहे हैं, क्योंकि आरोग्य बिगड़ने पर भजन नहीं होता, भूख लगने पर भजन नहीं होता, बदहजमी होने पर जप नहीं होता, है ना। तो आरोग्य की भी आवश्यकता है, अच्छी नींद की भी आवश्यकता है, सब चीज़ की आवश्यकता है। तो यही उनसे लेकर हमको उसको इस्तेमाल कैसे करना है, कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए करना है। जब ये देवताओं के द्वारा दिए गए वरदानों को हम कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं तो वो भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके लिए उनको ये वरदान देने की शक्ति दी गई है वो पर्पज उसका पूर्ण हो जाता है। और लोग केवल उनसे ले लेकर भोग लेने का प्रयास करते हैं और कर्म निर्माण करते हैं और कर्म फल निर्माण करते हैं और फिर फलों का भोगन मतलब दुख का भोग करते रहते हैं। लेकिन जो भक्ति होता है वो युक्त वैराग्य होता है, जो भी उसके जीवन में है सब भगवान की सेवा में लगाता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतुसु कर्मसः, बुद्धि से सब चीज़ों का इस्तेमाल भगवान को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो आप लोगों को विनती है, सब देवताओं को दंडवत करो, प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, लेकिन दिल जो अपना है वो कृष्ण को दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल।